बाबा के नूरे रतन पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं स्वराज्य अधिकारी आत्माएं आप सभी को यहां बाबा के घर में खास मधुबन पांडव भवन में सेवा करने का चांस मिला है। सभी सेवाधारी हैं तो बहुत बहुत भाग्य है। मुझे तो ये हिस्ट्री हॉल याद आ जाता है, जब हम भी बचपन में यहाँ पर आते थे और एक बारी हमने यहाँ पर नाटक किया था, तो उस नाटक में मुझे मुसलमान का रोल दिया था, तो यहीं पर ही हम नाटक कर रहे थे। पहला ब्रह्मा भोजन, ये सामने वाला जो अभी हॉल बना है विजिटिंग रूम, तो यहाँ पर ब्रह्मा भोजन। तो किस तरह से यादें तरोताजा हो जाती हैं, और ये हिस्ट्री हॉल जहाँ आप चारों तरफ क्या देख रहे हैं, बाबा की साकार बाबा की चित्र हैं और चरित्र छिपे हुए हैं, और इस हॉल में आते ही ऐसे लगता है जैसे सब वरिष्ठ हमारे दादियां बाबा और वरिष्ठ भाई बहने सब की जैसे हम छत्र छाया में बैठे हैं, लगता है ऐसा, सबकी छत्र छाया हमारे सर पर है। तो बहुत ही हमारा सौभाग्य है जो हम इस धरनी पर आने वाले समय में लोग तरसेंगे, इस धरनी पर पांव रखने के लिए भी तरसेंगे और इसकी मिट्टी भी उठा करके सिर माथे लगाएंगे। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम सेवा हमको कुछ समय के लिए भी मिली है, तो ये बहुत 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 भाग्य है। लेकिन हम सिर्फ कर्म करता नहीं है यहाँ, कर्मचारी नहीं है यहाँ, अपने बाबा के घर में अपना भाग्य बनाने के लिए यहाँ सेवा करने आए हैं। तो बहुत दिल जान से एक तो सेवा करनी है और सेवा के साथ साथ अपना पुरुषार्थ बहुत अटेंशन देना है। जब यहां मैं शायद 83 या 84 में एक महीना सेवा के लिए आई थी, तो किसी बड़े भाई की क्लास थी और उन्होंने कहा कि जो एक महीना यहां पर दिल जान से सेवा कर लेते हैं और साथ साथ अपने पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देते हैं, तो ये एक महीने का पुरुषार्थ हमें जीवन भर काम आता है, क्योंकि संस्कार बन जाता है। तो यहां पर हम जब सेवा करते हैं तो विशेष अटेंशन कि अगर एक मिनट भी मिला है, आधा मिनट भी मिला है, तो उसमें भी मैं कोई ना कोई श्रेष्ठ संकल्प कर लूं, कोई ना कोई स्वमान का अभ्यास कर लूं। कितना सुंदर वातावरण है, एकदम साइलेंस का, एकदम चार्ज्ड एटमॉस्फेयर। देखो यहां बठियां ही बठियां चल रही हैं और बाबा मम्मा की कर्म भूमि है, और इतने समय तक हम तो अव्यक्त बाप दादा से ओम शांति भवन में मिलते थे तो भाग भाग के बाबा बाबा करते, यहाँ चक्कर लगाते फिर वापस जाते, चक्कर लगाते फिर वापस जाते, क्योंकि सारी रात बाबा रहते थे, सारी रात रहते थे, बीच में आते थे। हम लोग इधर चक्कर लगा के कभी पानी पीना है, चाय पीनी है कुछ, तो हर कदम पे हमारा क्या होता था, बाबा बाबा बाबा। तो ऐसी भूमि पर हम आए हैं तो इस भूमि का पूरा पूरा लाभ लेना है, इस वातावरण का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है, क्योंकि एक ही जो डिस्टर्ब करते हैं ना हमारे पुरुषार्थ में या हमारी तपस्या में, वो है मेन ये मोबाइल। लाल बत्ती में भी उंगलियां चल रही हैं। किसी ने कहा कि आज का मोबाइल जो यूज करते हैं, तो मोबाइल जो होता है ना वो यूं यूं करते रहते हैं, तो जस्ट लाइक ए मॉन्की। तो हम आए हैं बंदर से मंदिर लायक बनने और फिर से हम वही उसमें तो नहीं जा रहे, समझ रहे हैं? तो हम सबको ये पुरुषार्थ करना है, अच्छे नंबरों में पास होना है या सिर्फ पास होना है? अच्छे नंबरों में पास होना है तो हर सब्जेक्ट पर हमें ध्यान देना है, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूरत बनना है, हर गुण के अनुभवी मूरत बनना है, हर शक्ति के अनुभवी मूरत बनना है। क्योंकि ज्ञान का अनुभव क्या है? ज्ञान आत्मा है, परमात्मा है, तीन लोक है, हमारा घर परम धाम, ये सब 84 जन्मों की कहानी, ये सबको पता है, तो पहले ही 7 दिन के कोर्स में ये सब जानकारी हमको मिल जाती है। एक है जानना और दूसरा है उस पर चलना, और चलने में कभी कभी कठिनाई भी आती है, तो उसके लिए ज्ञान को किस तरह से मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके चलना है, तभी तो ज्ञान के अनुभवी बनेंगे। क्योंकि इस शरीर को भी कैसे चलाना उसका भी ज्ञान चाहिए, सिर्फ आत्मा परमात्मा का नहीं, शरीर को देखा ही नहीं, शरीर की केयर की ही नहीं, जी नहीं हमें तो योग करना है, योग करना है, और शरीर को भोजन चाहिए, भोजन के टाइम उसे भोजन ही ना दें तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हर कर्म कैसा हो? ज्ञान युक्त, लाइट हाउस, माइट हाउस, तभी हम बन सकेंगे। योग युक्त हो, राज युक्त हो, ऐसा होना चाहिए या ऐसे ही जो आया वो कर लिया? तो हर गुण को भी हमें धारण करना है, तो धारण करने में कोई कोई प्रॉब्लम भी आती है, और यहां तो हम इस एटमॉस्फेयर में बैठे हैं, लेकिन जब हम वापस जाते हैं वही घर वही परिवार और वही सब बातें होती हैं, लेकिन उसमें भी मुझे कैसे इन गुणों को धारण करके चलना है। जैसे यहां पर भी सारा दिन हमारा ट्रैफिक कंट्रोल भी चलता है, तो इसी रीति से ऐसे ही हम वहां पर भी अपने ट्रैफिक कंट्रोल को कंटिन्यू रखें, क्योंकि बाबा ने हमें क्या बनने के लिए यहां बिठाया है, सोल कॉन्शियस। हमारी सत्युग में स्थिति कैसी थी, कैसी थी, सोल कॉन्शियस या बॉडी कॉन्शियस? सोल कॉन्शियस। और सोल कॉन्शियस के आधार से ही हमारी इतनी वैल्यू थी। जो आज दिन तक भी मंदिर बनते हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति। द्वापर युग में धर्म कॉन्शियस हुए, तो धर्म की स्थापना हुई। सब धर्म कब आए, द्वापर युग में। परंतु उनमें भी एक धर्म की कॉन्शियसनेस थी, या यूं कहें कि इतनी धारणाओं में वो पक्के रहे हैं उस समय, तो उनके फॉलोअर्स भी आज दिन तक उनकी यादगारों को कायम किए हुए हैं। फिर द्वापर युग के बाद हम हो गए संबंध कॉन्शियस। हमारे गांव का है, हमारे शहर का है, हमारे जाति का है, तो क्या हुआ, उसी में हम कितना प्यार मोहब्बत दिखाते। और उसके बाद धीरे धीरे और नीचे आए तो हम हो गए कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस। इसीलिए वर्तमान समय सबसे ज्यादा स्पा एक्सरसाइज। हम एक जगह गए, शायद सोनीपत ही था, एक मॉल में। सारी नीचे थोड़ी सी शॉप्स थी, बाकी सारी जिम एंड स्पा, जिम एंड स्पा, जिम एंड स्पा। मैंने कहा इतना चलता है क्या, क्या सब चलता है, इतने बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी मेंटेन करनी है। और अब बॉडी मेंटेन करने वालों को भी कोरोना ने क्या दिखा दिया, दिखाया नजारा, हा? दिखा दिया ना, हा? और उसके बीच में आया मनी कॉन्शियस। रिश्ते नाते रहे ना रहे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, देश जाएंगे विदेश जाएंगे, पैसा कमाएंगे। माँ बाप अकेले यहां बैठे, बैठे हैं तो बैठे हैं, हम तो विदेश जाएंगे धन कमाएंगे। और कोरोना ने सब नजारे दिखा दिए, कितना भी आपने धन कमाया है, कितना भी कुछ किया है, लेकिन सब धरा पर धरा का धरा रह गया। तो अब वैल्यू किसकी होनी है, अब वैल्यू किसकी होनी है, फिर से जो सोल कॉन्शियस बनेंगे। जिनके मन में एकाग्रता होगी उसी के लिए ही बाबा हमें जोर दे रहे हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ। बार बार क्या करो, मन को काम दिया है ना, नहीं तो मन भी जिन की तरह है ना। अगर मन को काम नहीं देंगे तो क्या करेगा, पता है ना। तो इसलिए बाबा ने हमें पूरे दिन के लिए काम दे दिया है। सत्युग में आप कैसे थे, परमधाम में, हा? कैसे थे परमधाम में हम? बाबा ने हमको स्मृतियां दिलाई हैं, हम सब कुछ भूल चुके थे। बाबा ने स्मृति दिलाई है, परम धाम में आप कैसे थे? बोलो बोलो कैसे थे? क्योंकि हम क्लास में इंटरेक्शन करेंगे, तो कैसे थे हम? निराकारी थे। और कैसे थे हम? पवित्र स्वरूप थे। और कैसे थे हम? हाँ जी, कैसे थे हम? बीज रूप थे। हाँ, शांत स्वरूप थे। और कैसे थे हम? सर्वशक्ति संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न। हाँ, विजुलाइज हुआ परम धाम में हम आत्माएं कैसी थी? चमकता हुआ सितारा। और कहा बीज रूप, तो बीज में सारे गुण और सारी शक्तियां समाई हुई थी। याद दिलाया बाबा ने, स्मृति आई। हाँ, और उन्हीं गुण और शक्तियों के आधार से हम सत्युग में आते हैं। जब हम छोटे थे तो रजौरी गार्डन सेंटर पर जाते थे दिल्ली में, तो वहां एक चित्र लगा हुआ था। उसके बाद मैंने और कहीं इतना चित्र वो देखा नहीं। वो चित्र क्या था? वो शुरू शुरू में बाबा ने बनवाए थे। वो चित्र क्या था कि परम धाम से आत्मा आ रही है सितारे की तरह, और वो नीचे प्रिंस और प्रिंसेस बन रही है। देखा है वो चित्र आपने किसी ने? हाँ, देखा है। हाँ, वो हमारे रजौरी गार्डन में लगा रहता था। तो वो हम आते ही क्या बनेंगे? किसके साथ खेलेंगे? स्मृति दिलाई। हाँ, और क्या स्मृति दिलाई? हम कैसे थे? सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये हमारी डिग्री यहां से ही जानी है, वहां नहीं बनानी है, इसी डिग्री के बेस पर वहां पर आना है। पर हमारा व्यवहार कैसा होगा? हमारा व्यवहार कैसा होगा? सत्यों को इमर्ज करेंगे। हाँ, अभी दो दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा ना कि आप देवता बनने वाले हो तो तुम्हारा खान पान कैसा होना चाहिए। मैंने कहा एक सीन इमर्ज करो, एक सीन इमर्ज करो, एक देवता सजे सजाए रूप में है, मुकुट भी लगा हुआ है, डबल ताजधारी है, बहुत सुंदर ज्वेलरी, बहुत सुंदर सजावट। हाँ, और वो सिगरेट पी रहा है। कोई इमेजिन कर सकता है क्या? हाँ, और यहाँ कोई कोई कहेंगे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा अपना देवताई स्वरूप इमर्ज करो, देवताई स्वरूप इमर्ज करो कि आप वहां चलोगे कैसे। तो वो सारा का सारा हमें यहाँ ही धारण करना है। संगम मिला किस लिए है? शूद्र से देवता बनने के लिए बीच में ब्राह्मण जन्म मिला, मिला किस लिए है? कि सहारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ही होना है। तो हम कभी ये कह ही नहीं सकते कि ये मुश्किल है, और मुश्किल होता तो भगवान नहीं कहता करने के लिए। मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, इसीलिए बाबा ने हमको कहा है बच्चे तुम कर सकते हो। माँ बाप को पता होता है मेरे बच्चों की कैपेसिटी कितनी है, तो हमारी कैपेसिटी है तभी तो बाबा ने कहा है हम कर सकते हैं। और हमने ही किया है, कल्प कल्प किया है, कल्प कल्प ये पद पाया है। तो इसीलिए सत्युग की स्मृति आने से, देवताई स्मृति आने से कितनी सारी बुराइयां कमियां वैसे ही दूर हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो। क्यों कहता है बाबा? देखो उनके अंदर कितने गुण हैं, कितनी विशेषता। देखो ये जो चित्र भी बना, तो एक एक चीज बाबा ने, मम्मा ने डायरेक्शन दे दे करके बनाया। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा नहीं बना, ट्रांस में भेजा मम्मा ने, बाबा ने, ये चित्र ऐसा होना चाहिए, ये चित्र ऐसा होना चाहिए, इसकी मालाएं कितनी होनी चाहिए, वो भी डिसाइड किया। तो इसीलिए हमको भी ऐसा बनना, क्योंकि हम सब हाथ क्या खड़ा करते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जबकि पता है सीट फिक्स है, फिर भी हम हाथ खड़ा करते हैं। लक्ष्य तो हमारा वही है ना। तो इसीलिए सतयुग की स्मृति आते ही, हमने तो पीछे ना इस लॉकडाउन में, क्योंकि पिछला लॉकडाउन था ना, तो पता नहीं था कितना लंबा चलेगा, तो हमने उसमें एक एपिसोड बनाए थे, आओ चलें सतयुग की ओर, 9 एपिसोड थे, तो हमने उसमें सतयुग की बातें सारी, कि सतयुग में क्या क्या होगा। सतयुग में ये जो रोड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये बाबा ने बताया है, सब काम हमारे एरोप्लेन से होंगे, विमानों से होंगे। तो उसमें ये भी बताया कि डेड बॉडी जाएगी ना, तो वो भी विमान से ही जाएगी। आपको महल कंस्ट्रक्ट करना है, मटेरियल आना है, वो भी कहां से आएगा? तो हमारी जीवन शैली कैसी होगी, वहां पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, वो सारे एपिसोड हमने स्टडी किया, फिर उसको टॉक शो के रूप में रखा। तो हम जब सत्यों के बारे में सोचते हैं, स्मृति आती है, तो कितनी सारी कमियां कमजोरियां हमारी ऑटोमेटिकली खत्म होने लगती है। फिर अगर हम देखें हमारे पूज्य स्वरूप को, तो पूज्य स्वरूप में भी क्या है, स्मृति आई, अपना पूज्य स्वरूप देखते हो कैसा है, दातापन का, सबको देने वाले, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तो उसके भी संस्कार तो यहाँ ही भरने हैं या वहां भरेंगे द्वापर युग में? इसीलिए बाबा हमें एक मुरली में कहते हैं कि तुमको वारिस भी यहां बनाने हैं, प्रजा भी यहां बनानी है, तो भक्त भी यहां ही बनाने हैं। भक्त कहीं वहां थोड़ी चल के बनाने हैं, वहां तो हमारी मूर्तियां होंगी ना, बनेंगे कहां पर, संगम पर, तो कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? देखो सारे हाथों में कुछ ना कुछ अलंकार, लेकिन एक हाथ क्या है, वरदानी हाथ, शुभ भावना और शुभ कामना हरेक के प्रति। कोई कैसी भी आत्मा है, हर आत्मा के प्रति हमारा भाव क्या हो, ये क्यों करता है, ये क्या करता है, ये ऐसा क्यों करता है, उसको पार्ट मिला हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा में हरेक आत्मा निर्दोष है, है किसी का दोष? भाई डायरेक्टर ने जो जिसको रोल दिया है वो वही ही तो प्ले करेंगे, या दूसरा कोई करेगा? तो उसको भी डायरेक्टर ने रोल दिया हुआ है, वो बिल्कुल निर्दोष है। हम कभी कभी बैठे बैठे दोष निकालना शुरू कर देते हैं। बाबा ने हमें ये काम नहीं दिया है। हरेक का पार्ट है, उस पार्ट को भी मुझे कैसे देखना है, साक्षी होकर के देखना है। और आजकल तो कोई वाणी से भी परिवर्तित नहीं होते हैं। आप एक बारी बोलोगे सामने वाले क्या, अपने आप को देख लो, क्या कहेंगे, यही कहते। तो इसीलिए उनके लिए मनसा वृत्ति, अभी से हम इतनी शुभ भावना, क्योंकि शुभ भावना तो तभी होगी ना जब मनसा में इतनी, हाँ वृत्ति में। और वृत्ति किससे बनती है, जब हम बार 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 वही सोचते हैं। उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं चित्त में बैठी हुई है उसकी ये बात। तो हमारे भी जब तक चित्त में ना बैठ जाएं ये बातें कि कोई कैसा भी है, मुझे उसको शुभ भावना शुभ कामना देनी है, तो अपने पूज्य स्वरूप को याद करना है। मेरा पूज्य स्वरूप किस बेस पर बनना है, अभी के बेस पर। इसलिए बाबा कहते हैं कोई कोई मूर्ति की पूजा देखो, दिन में कितनी बारी ड्रेसेस चेंज होती हैं। दिल्ली में झंडे वाले मंदिर है, झंडे वाली माँ का मंदिर है, और उस मंदिर में दो ड्रेसेस तो रेगुलर बेस पे चेंज होती हैं, रेगुलर बेस पे, और कोई कोई दिनों में तीन बारी भी चेंज। तो कहा वहां ना पर्ची डलती है, और उस पर्ची में जिसका नंबर आ गया, क्योंकि 365 दिन है तो कितने होंगे, 730 ड्रेसेस हुई, 730 में कहते हैं कि 30 ड्रेसेस हम वीआईपी के लिए रखते हैं, 700 ड्रेसेस की पर्ची डलती है, और उसमें हजारों होते हैं, लेकिन 700 में जिसका नंबर आ गया तो वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती है। एक वो है जो ड्रेस देने में भी अपना भाग्य समझ रहे हैं और दो बारी तीन बारी ड्रेस बदली जा रही है, और एक वो होंगे जिनकी साल में एक ही बारी पूजा होएगी या महीने में एक बारी पूजा होएगी। तो हमको कौन सी देवी और कौन सा देवता बनना है, ये हमने डिसाइड करना है, किसी और ने डिसाइड नहीं करना। एक मुरली में तो बाबा ने कहा था एक देवी पे तो दलिये का भोग चढ़ता है, क्या दलिये का बोला था, और कोई कोई देवी के देखो तो कतारों पे कतारें लगी पड़ी है, कितनी कितनी देर वेट कर करके जाते हैं, खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो मेरा पूज्य स्वरूप कैसा होगा, कोई कोई देवी देवता के होते हैं ना तो होठ बनाते हैं ना, तो होठ भी ठीक से नहीं बने हुए होते, तो हम कहते हैं इन्होंने ना अभी वाणी पे ना पूरा नहीं किया होगा, या कोई कोई देवी के ऊपर ना मुस्कुराहट नहीं है पूरी। तो हमारा यहाँ पर जो चरित्र होगा वो हमारी मूर्ति में चला जाएगा, मूर्तिकार ऑटोमेटिकली वैसा ही बना देगा, और फिर हमारा है ब्राह्मण स्वरूप। तो ब्राह्मण में हम क्या करते हैं, ब्राह्मण बने, ब्राह्मण किसको कहते हैं, ब्राह्मण की विशेषताएं सुनाओ, ज्ञान सुनना और सुनाना। सच्चा ब्राह्मण कौन, ज्ञान सुनना और सुनाना। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, ज्ञान सुनने सुनाने को भक्ति मार्ग में कहते हैं कच्छ में कुरम हो, हमारी बगल में सदा क्या हो, गीता हो। तो इसी तरह से हमारा कर्म क्या है, ज्ञान सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, और क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सभी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में या सिर्फ यहाँ आए हैं सेवा में तभी उठते हैं? हा? अच्छा सच सच बताओ, घर में भी उठते हैं? हा? कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, कभी कभी। आज हम एक मुरली पढ़ रहे थे, अव्यक्त मुरली। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं हमको बाप समान बनना है, कहते हो सभी हा? और ब्रह्मा बाप तो कभी कभी वाला नहीं था, कभी कभी वाला था या सदा वाला था? हा? कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी अमृत वेला जो, कभी कभी। तो बाबा कहते लक्ष्य क्या रखते हो, बाप समान बनना है। तो जब ब्रह्मा बाप ने कभी कभी नहीं कहा, समटाइम समटाइम नहीं कहा, तो आप कैसे कहते हो फिर, और कहते हो हम बाप समान बनना चाहते हैं? तो ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन खाए, या किसी के भी हाथ का चलो जी दृष्टि दो और खा लो, ऐसा तो नहीं है ना। शुद्ध पवित्र हाथों का बना हुआ भोजन, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन। कभी कभी कहते ये पवित्र है ना, पर ज्ञान में चलते ही नहीं है, क्योंकि अन्न का मन पर असर, और फिर हमारे ही मुख से निकलता है बहन जी कभी कभी ना योग नहीं लगता है। हम कहते हैं कुर्सी का एक पाया तो काट दिया है, चार पाए हैं ना, चार में से एक थोड़ा सा कटा हुआ, और आप सोचो हम एकाग्र होकर के बैठ जाएं, वो बार 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 हिलती रहेगी ना कुर्सी, तो एकाग्रता कैसे होगी, योग कैसे लगेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन, भोग लगाया हुआ भोजन। भोग लगाते हैं, सभी लगाते हैं, कोई ऐसे तो नहीं है जो भोग ना लगाते हो और खा लेते हो। भोग लगाया हुआ भोजन पहले भगवान को ऑफर करें और उसके बाद हम स्वीकार करें। हाँ, तो ब्रह्मा भोजन और ब्राह्मण की क्या विशेषता है, ब्रह्मा के आचरण को जीवन में लाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, ब्रह्मा भोजन और ब्रह्मा के आचरण को, माना दिनचर्या को, आचरण क्या कहेंगे, दिनचर्या कहेंगे ना, उस दिनचर्या को फॉलो करें। यूं तो ब्राह्मण की वैल्यू लौकिक में जन्म से पूर्व मृत्यु के बाद तक उसकी इंपॉर्टेंस है। कोई भी कार्य बिना ब्राह्मण के होते, कोई भी कार्य बिना ब्राह्मण के होता नहीं है। कोई बच्चे का जन्म हो, नामकरण हो, गृह प्रवेश हो, शादी हो, ब्याह हो, मरना हो, वो क्रियाकर्म करना हो, क्रिया पे भी वो ब्राह्मण, जब तक वो सारा पढ़ेगा नहीं करेगा नहीं, फिर स्वस्तिका बनाएगा और कर, तब जाकर पगड़ी रस्म होगी, है या नहीं है? तो ब्राह्मण की कितनी वैल्यू है लौकिक में भी ब्राह्मणों की, वे तो हमारी तो हर जगह वैल्यू, और भगवान को हमारी वैल्यू है। तभी तो कहते मेरे नैनों के नूर हो, मेरे नूरे रतन हो। हा? आप समझते हो मैं नूर जहां हूं, मैं नूर जहां हूं, मैं शहनशाह हूं, शाह जहां हूं, उन्होंने तो सिर्फ नाम रख दिए, लेकिन हम भगवान के नैनों के नैन। हम हैं तो जग ये रोशन है, इतनी हमारी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को जानना है, समझना, क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम कौन हो, बच्चे तुम कौन हो, तुम्हारे से सारा जहान रोशन है, तुम मेरे घर के श्रृंगार हो और तुम सदा श्रृंगारे हुए दिखाई दो। कौन सा श्रृंगार? गुणों का श्रृंगार। 16 श्रृंगार करो भले, बाहर के नहीं लेकिन अंदर के। सोचना वो 16 श्रृंगार मुझे कैसे करने हैं, कैसे उसका स्वरूप बनना है। मैं श्रृंगारी हुई मूरत हूं, तो आपकी मूरत भी पूज्य स्वरूप से श्रृंगारी हुई और सत्ययुग में भी श्रृंगारी हुई और संगम युग हमको मिला ही है क्या करने के लिए? सब रजुवनेट करने के लिए। जो हमारे शूद्र पने वाले संस्कार थे वो सारे के सारे चेंज करने हैं। पहले हम अपने को देह समझते थे, अब यहाँ आत्मा समझना है, बाबा से मिलन मनाया। और यही संस्कार बनाते बनाते बाबा कहते हैं फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता हमारी स्थिति है। फरिश्ता क्या? स्थिति है। किसी भी चीज में अटकना नहीं है। वैसे भी नाटक है, क्या समझा? ना अटक, अटकना नहीं है किसी भी बात में। कौन क्या कर रहा है, यात्रा आगे बढ़ो, साइड सीन है, आगे बढ़ो। अटक जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। तो इसीलिए ये संगम युग बहुत बहुत हमें वैल्यू देने वाला है, हमें वैल्यूएबल बनाने वाला है। तो अपनी वैल्यू है या किसी ने कुछ कह दिया और मूड ऑफ, तो अपनी वैल्यू नहीं है। क्या करूं बहन जी, मेरे तो तबीयत खराब हो जाती है, कुछ कहती है तो मेरा मूड ही खराब हो जाता। मैंने अपने सोमान की सीट को छोड़ करके उसने जो कहा उसको पकड़ लिया। बाबा इतने वरदान देता है, इतने सोमान देता है हमको, वो हमें झट से भूल जाते हैं। और किसी ने कुछ कह दिया तुम हो ही ऐसी, वो सारा दिन चल रहा है। बाबा कहते ज्ञान का विचार सागर मंथन चले और हमारे मन में क्या चलता है। इसीलिए मुरली हम भूल जाते हैं और बातें याद रहती हैं। और हमारी दादियों ने क्या किया कितनी बारी दादी मुरली पढ़ती थी, कितनी बारी? और आज हम कितनी बारी पढ़ते हैं? एक बारी सुन ले, दूसरी बारी सुनाने के लिए कोई कह दे ना ना हमने सुबह सुन ली थी। पूछो क्या सुना था, याद कुछ नहीं है हाँ ठीक बात है, परंतु इन दादियों ने, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ दादियां कोई पढ़ी लिखी थी ज्यादा? सिर्फ बाबा की आज्ञाकारी और बाबा के ज्ञान से बहुत प्यार। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ, बाबा ने जो कह दिया आज हम अपना विवेक चलाते हैं। आज हम बुद्धिजीवी होकर के अपना विवेक बहुत चलाते हैं, लेकिन दादियों ने अपना विवेक नहीं चलाया। जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बस। और पिछली बुनली में तो बाबा ने कह ही दिया, मैं बुद्धिवानों की बुद्धि बन करके जो मुझे दिल से याद करते हैं, दिल देते हैं, तो मैं दिमाग अपने आप दे देता हूँ। दे देता हूं, तुम सिर्फ दिल ले आओ, दिमाग नहीं चाहिए भगवान को। कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। अनपढ़ माताएं कितनों को खड़ा कर देती हैं और पढ़े लिखे सोचते रह जाते हैं। जी हजूर, बाबा भी जी हजूर करता है। हा? तो इसीलिए इस समय हमारी वैल्यू है, जितना अधिक हम इस सोल कॉन्शियस बनने पर अटेंशन दें। बाकी कुछ काम नहीं आना, पता है। हा? एक सैंपल तो देखा है ना कोरोना का, रिश्ते नाते हा? दूर देखते भी नहीं थे, घर से गए और डेड बॉडी भी घर नहीं आई। कहां गई, कैसे गई? इसीलिए बाबा ने उस समय एक संदेश दिया था कि जो भी आत्माएं जा रही हैं ना, बहुत असंतुष्ट जा रही हैं, क्योंकि कोई अपना साथ में नहीं खड़ा है। चलो एक मृत्यु के समय कोई रिश्ते नाते साथ खड़े होते हैं तो शायद आत्मा को वो होगा ना, भाई बाल बच्चे साथ में हैं, खड़े तो हैं ना, जाना तो है, लेकिन उस समय कोई भी नहीं है। और कैसी कंडीशन में वो शरीर छोड़ा, तो बाबा कहते बहुत भारी एटमॉस्फेयर है और असंतुष्टता का एटमॉस्फेयर है। तो अब लास्ट में हमको किसने साथ देना, किसने साथ देना हा? और आपको तो मंत्र मिला हुआ है ना, क्या नहीं? मेरा तो एक शिव बाबा पक्का किया है, बोलो जरा। बाबा ही मेरा संसार है। गणेश की क्यों पूजा हो गई, कार्तिक की क्यों नहीं उतने मंदिर बने, क्यों नहीं उतना वो हुआ? मेरा संसार मेरे माता पिता, बस। तो बाबा ही मेरा संसार है। और संसार में क्या चाहिए? संबंध, वस्तु, वैभव, सब बाबा देगा। जब हमने कह दिया बाबा मैं तेरा, तो भगवान भी क्या कहते हैं, बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे मैं तेरा, करके देखो, बच्चे मैं तेरा, मैं आया ही तेरे लिए हूं, सब कुछ जी हजूर। बाबा तो परछाई की तरह डालूंगा सब कुछ, बस सच्चे रहना, साफ रहना और एक मुझे ही देखते रहना, ठीक है? तो बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा परिवार है, बाबा है तो मेरे जीवन, क्योंकि वो है तो हमारी वैल्यू है। बाबा नहीं मिला होता हमारी क्या वैल्यू? अब ब्रह्मा बाबा को ही देख लो, शिव बाबा आया तो बाबा कितनी वैल्यू, हर घर में बाबा की फोटो है या नहीं है? हा? अगर शिव बाबा ने अडॉप्ट ना किया होता कौन रखता ब्रह्मा बाबा, कौन कहता, कौन घर घर में फोटो लेके जाता? हा? तो बाबा मिला तो हमारी वैल्यू है, तो बाबा को हर पल हमें साथ रखना। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरा हर संबंध से हर संबंधी है, ठीक है? ठीक है, ओके। ओम शांति, ओम शांति।